أقول أوكي، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم، كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو اس کلاس کے اندر ہم سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر پڑھتے ہیں معارف القرآن جلد نمبر 5 سے، اور ابھی جو آیات تلاوت کی گئی وہ آیت نمبر 96 سے 100 تک ہیں، اور ان کی ہم خلاص تفسیر پڑھ ہی رہے تھے، یا ہم نے معارف و مسائل شروع کر دیے تھے. بہرحال اس کے اندر بہت سارے موضوعات پہ بات ہو چکی ہے، خصوصاً ہدایت کے موضوع کے اوپر، اور جو آخری جمعے کے درس میں بات ہوئی تھی وہ کیا تھی کہ جو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا نا کہ یہ لوگ، ان لوگوں کو جو یہ سزا ملتی ہے تو وہ اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، ٹھیک ہے، آیتوں کا انکار. تو آیات سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کیا کہ نہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ نے ایسا کوئی حکم دیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی باتیں جن لوگوں نے کری یا جو لوگ کرتے ہیں، تو ان کو پھر اس طرح کی جہنم کے اندر سزا ملتی ہے. تو اس کے بعد اسی کو اللہ تعالیٰ نے مزید یہ کھولا کہ ان لوگوں نے یوں کہا تھا کہ کیا ہم ہڈیاں، اور یعنی ایک تو آیتوں کا انکار کرتے تھے نا، اور پھر اس کی وجہ بتاتے تھے، ٹھیک ہے، کہ ہم کیوں جو ہے وہ ان آیتوں کا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ پھر اپنی اس عمل کی حجت بناتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے عمل کی. دیکھیں، جب کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے نا، تو وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسروں کو بھی سیٹسفائی کرنے کی، مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو میں بالکل صحیح کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی یہ باور کراتا ہے کہ میں بالکل صحیح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو کوئی گلٹی کانشنس نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو کوئی برا فیل نہ ہو، اس کو ندامت نہ ہو. اور اسی طریقے سے وہ دوسروں کو بھی یہ کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے نادم ہونے کی، شرمندہ ہونے کی، ٹھیک ہے. تو یہ نا انسان کا اپنا ایک نفس ہوتا ہے جو کہ ویلیڈیٹی چاہتا ہے، تو وہ کوئی کہیں اور سے اگر اس کو ویلیڈیٹی نہیں مل رہی ہوتی ہے کہ کہیں سے اس کو واقعی کوئی دلیل مل جائے، کوئی ثبوت مل جائے اپنے صحیح ہونے کا، تو وہ اپنا ثبوت خود بنا لیتا ہے. انسان کا نفس کیا کرتا ہے، وہ اپنے صحیح ہونے کا ثبوت خود بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے بھی اگزیکٹلی یہی کام کیا تھا کہ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرتے تھے، है ना, वो कहते थे कि ये अल्लाह के रसूल नहीं हैं, ये जो बातें हमें कह रहे हैं अल्लाह के हुक्मों के तौर पर जो हमें बता रहे हैं, ये अल्लाह का हुक्म नहीं है। तो अब इसकी जो है ना, वो अपने नफ्स को क्या दलील देते थे, है कैसे सेटिस्फाई करते थे? वो ऐसे करते थे कि वो ये कहते थे कि ये जो बातें करते हैं ना, ये तो बिल्कुल ही फजूल किस्म की बातें, ये तो बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक किस्म की बातें हैं, बिल्कुल ही अजीब व गरीब किस्म की बातें हैं। इस वजह से ना, इनकी दूसरी बातें क्योंकि अजीब व गरीब है ना, इस वजह से हम इनकी इन बातों को भी नहीं मानते जो अल्लाह के हुक्म बताते हैं, हम उनको भी नहीं मानते। तो वो क्या अजीब व गरीब बातें जो ये नबी अलैहिस्सलाम को कहते थे कि ये क्या अजीब व गरीब बातें, वो ये कि ये कहते हैं कि जब हम मर करके हड्डियां हो जाएंगे और हमारी हड्डियां चूरा चूरा हो जाएंगी, तो हमको फिर से उठा लिया जाएगा, हमको फिर से बना दिया जाएगा, जिंदा कर दिया जाएगा, है, और फिर हमसे हिसाब किताब लिया जाएगा। ये कैसी अजीब गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये तो बिल्कुल ही ना, यानी वो है, इनके ऊपर तो असर हो गया है, आसेब का असर हो गया है, जादू टोने का असर हो गया है। तो चूंकि इनके ऊपर जादू टोने का असर हो गया है, आसेब का असर हो गया है, तो हम इनकी कोई बात भी नहीं तस्लीम कर सकते, हम इनकी कोई बात भी तस्लीम नहीं कर सकते। देखें, ये होता है हुज्जत बनाना, ठीक है ना, हमारी हमारी कॉमन मुहावरे में इसको कहते हैं हुज्जतबाजी, ठीक है, यानी अपने आ, आ, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कोई कोई ना कोई दलील बना लेना, ठीक है। तो ये इन काफिरों की आदत थी कि इस तरीके से ना दलील बनाते थे। तो इस वजह से ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात को इसके आगे जिक्र किया है कि ये लोग कहते हैं अदा कुन्ना इज़ाम व रुफातन अ इन्ना लमबऊसून खल्कन जदीदा, ऐसी अजीब व गरीब बातें करते हैं ये जो अपने आप को अल्लाह का रसूल कहते हैं, अजीब और गरीब बातें करते हैं कि हम दोबारा से उठा लिए जाएंगे। तो अल्लाह ताला इनकी इस बात के ऊपर, इनके इस एतराज के ऊपर चुप करके नहीं बैठ जाते, खामोश होकर नहीं बैठ जाते, बल्कि अपनी तरफ से भी एक दलील देते हैं। क्या कि अवलम यरो अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्द क़ादिरुन अला अन यख़लुक़ मिथलहुम, कि ये लोग नहीं देखते कि बेशक जिस अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को तख्लीक किया है वो कादिर है कि इनके जैसे दोबारा से तख्लीक कर ले, इसी तरीके से दोबारा से तख्लीक कर ले, है ना? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो इनको कन्विंस करने की कोशिश करते रहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कन्विंस करने की कोशिश करते रहते हैं उनकी तमाम तर जिदों और बेवकूफियों और हुज्जतबाजियों के बावजूद, ठीक है। तो यही सुन्नतुल्लाह है, हमें भी इसी सुन्नत के ऊपर अमल करने की कोशिश करते रहना है, ठीक है। कोई शख्स ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा हो, हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहे, सही है, जब हमारा परवरदिगार कोशिश कर रहा है तो हम क्यों ना कोशिश करें, ठीक है ना। हालांकि उसको तो मुस्तकबिल का पता भी है, हमें तो मुस्तकबिल का पता भी नहीं होता कि कौन नेक बन जाएगा, कौन गुनाहों से तौबा कर लेगा, किसको हिदायत मिल जाएगी, हमें तो पता भी नहीं होता, तो फिर हम क्यों ना कोशिश करें भाई, क्या पता अल्लाह ताला किसी को हिदायत दे दे, ठीक है। तो अल्लाह ताला फिर मौजज़ों के जरिए भी, बात पिछले जुम्मे को हुई थी कि मौजज़ों के जरिए से भी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, करामतों के जरिए से भी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, इवन जो साइंसी दलाइल हैं जिनको मुशाहिदाती दलाइल होते हैं, ऐसी ऐसी बातें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताई जो कि आज के दौर में साइंस ने उनको कन्फर्म भी किया कि हाँ वाकई ऐसा ही है जैसे कि कुरान मजीद में 1400 साल पहले बता दिया गया था। तो ये भी तो अल्लाह का कन्विंस करने का एक तरीका है ना इंसानों को कि बात मान जाओ, ठीक है। तो हम भी मुख्तलिफ तरीकों से जैसे भी मुमकिन हो, जायज हदूद में रहते हुए जैसे भी मुमकिन हो, हम अगले बंदे को कन्विंस करने की कोशिश करते रहा करें, सही है। इसके ऊपर किसी को कोई सवाल है या बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ लिया करें इस चैट विंडो पे लिख करके। अच्छा, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आखिर में फरमाया कि कुल लो अंतुम तमलिकून खजाइन रहमत रब्बी, कि कह दीजिए कि अगर तुमको अल्लाह ताला के तुम्हारे मेरे रब के रहमत के खजानों के ऊपर मालिक बना दिया जाता तब क्या करते तुम, लअमसकतुम खशयतल इन्फाक, तब तुम इसको लेके बैठ जाते, ठीक है ना, अल्लाह के खजानों को बंद करके बैठ जाते इस डर से कि अगर तुम इनको खर्च करोगे ना तो ये खत्म हो जाएंगे। फिर आगे फरमाते हैं, वकान इंसानु कतूरा, और इंसान तो कतूर है, कतूर, कतूर कहते हैं तंग दिल को, कम हिम्मत और कम हौसले को कतूर कहते हैं, ठीक है। अब ये कौन कह रहा है, ये कोई हमारे जैसा इंसान नहीं कह रहा कि भाई मेरी बात नहीं मानते ना तो तुम तो बेवकूफ हो, तुम मेरी बात नहीं मानते, तुम तो जिद्दी हो, तुम तो हठ धर्म हो, तुम तो फलाने हो, तुम तो ढिमकाने हो। हम गुस्से में आके कह देते हैं ना दूसरों को कि मेरी बात नहीं मानता तो ये ऐसा है ये वैसा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे जैसे इंसान तो नहीं है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर किसी अगर कह रहे हैं कि इंसान कतूर है तो इसका मतलब क्या है कि वो वाकई कतूर है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक है, मालिक है, राइट। अल्लाह ताला को हमारी रग रग रेशे रेशे का पता है कि अल्लाह ने हमें कैसा बनाया है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हमारी जिस्मों को बनाया और उन जिस्मों के अंदर जो अल्लाह ताला ने जो जो सलाहियतें रखी ना, अल्लाह ताला को उन सलाहियतों का भी पता है। जो अल्लाह ताला ने मिजाज बनाए हैं हमारे, अल्लाह ताला को उन उस मिजाज का भी पता है ना, ठीक है। अल्लाह ताला तो खालिक कुल है, हर चीज की तख्लीक करने वाले, तो सिर्फ जिस्मों और हड्डियों और गोश्त पोश्त इन सब के तख्लीक करने वाले तो अल्लाह ताला खाली नहीं है ना, बल्कि हमारे जहन में जो 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 सोचें आती हैं, जो मैसेजेस चलते हैं हमारे दिलो दिमाग के अंदर, अल्लाह ताला उसके भी खालिक है, राइट। तो अल्लाह ताला ने ना इंसान को पैदा किया और उसके अंदर कुछ सलाहियतें रखी, कुछ अच्छाइयाँ रखी और कुछ जो है ना वो उसके अंदर कमी कोताहियाँ रखी, ठीक है। हमारी फितरत के अंदर अल्लाह ताला ने कमी कोताहियाँ भी रख करके हमें पैदा किया है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका अपने कुरान मजीद के अंदर बाकायदा ऐलान भी फरमाते हैं, ठीक है। जैसे अल्लाह ताला कहीं पे फरमाते हैं कि वखुलकल इंसानु मिन अजल, इसके अंदर हमने उजलत का मादा रख के इसको पैदा किया है, ठीक है। और भी मुख्तलिफ जगह है, कहीं पे शायद साहब जिसने नोट भी किया था वो अब मुझे मिल नहीं रहा कहाँ नोट किया था। खुलकल इंसान में अजल है, कानल इंसानु कतूरा है, ठीक है। ये भी तो एक सिफत है ना हमारे अंदर कतूर की, व कानल इंसानु अजूला, ठीक है। ये भी अल्लाह ताला कुरान में हमें बताते हैं कि इसको भी हमने उजलत यानी ये उजलत पसंद है, कानल इंसानु अजूला, ठीक है। उसी तरह इन्नहु काना जलूमन जहूला, राइट, ये जो है जालिम है और जाहिल है, ठीक है। यानी इसको जो है ना वो इन ऑफ इट सेल्फ इल्म नहीं होता चीजों का, ठीक है ना, यानी इसको सीखना पड़ता है इल्म, हम इसको इल्म देते हैं तब इसको इल्म हासिल होता है, वरना अपनी नेचर में ये जाहिल है और अपनी नेचर में ये जालिम है, ठीक है। एक जगह फरमाते हैं, कल्ला इन्नल इंसान लयतगा अर्रआहुस्तगना, ठीक है, कि ये जो है ना ये बागी है ये, और ये समझता है कि इसको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है, बड़ा मुस्तगनी है ये, इसको किसी की जरूरत नहीं है, सही है। तो इस तरह की चीजें अल्लाह ताला ने हमें दे करके पैदा किया, हमारे अंदर कमजोरियां, साथ साथ अल्लाह ताला ने हमारे अंदर कुछ खूबियां भी डाल करके पैदा किया, ठीक है। जैसे पिछली क्लास में बात हुई थी कि हम सब में अपने रब का शऊर पैदा करके पैदा किया, रब का शऊर, ठीक है, कि हमारा एक बनाने वाला है, हमारा एक पालने वाला है, सिर्फ बनाने वाला नहीं बल्कि पालने वाला, ठीक है। क्योंकि इस बात का शऊर हम सब के अंदर मौजूद है, हम सब अपने परवरदिगार को देख भी चुके हैं और उसके रब होने का इकरार भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारी घट्टी के अंदर ये सलाहियत मौजूद है ना अपने परवरदिगार को पहचानने वाली। उसी तरह हमारे अंदर अल्लाह ताला ने कुछ वर्च्यूज भी पैदा, जैसे जिसको अंग्रेजी में जो है ना वो वर्च्यूज कहते हैं, यानी हमें हम खुद चाहे कोई गलत काम कर रहे हो लेकिन अच्छा काम करने वाला इंसान हमें बाय नेचर अच्छा लगता है, ठीक है।
सच हमें अच्छा लगता है, सच्ची सीधी खरी बात है ना, तो गुनाहगार इंसान को भी खरी बात अच्छी लगती है, सच्ची बात अच्छी लगती है। हाँ, अपने खिलाफ खरी बात उसको बुरी लग जाती है अगर गुनाहगार इंसान है, लेकिन वैसे उसको ये बात अच्छी लगती है। प्यार मोहब्बत करने वाली, राइट, एक दूसरे के साथ अच्छे अंदाज में रहना। और ये काफिर होते हैं, बहुत बेहया, बहुत बेशरम, बहुत गुनाहों में पड़े हुए होते हैं, लेकिन जब उनको एक अच्छी सा कोई इंसानों की आपस की मोहब्बत की और अच्छे सुलूक की कोई चीज, कोई कहानी पढ़ते हैं, तो इनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, राइट। हालांकि टीवी देखते हैं, टीवी के ऊपर क्या क्या खराफात होती हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई अच्छा सा माँ बाप के औलाद के साथ कोई मोहब्बत का वाकया नजर आ जाता है तो उसके ऊपर ये भी खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि उसको अच्छा समझते हैं ना, राइट, उसको यानी दिल उनकी तरफ, उस तरफ माइल होता है। तो ये हमारी फितरत के अंदर ये अच्छाइयां भी हैं, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारी फितरत के अंदर अच्छाइयां भी मौजूद हैं और हमारी फितरत के अंदर बुराइयां भी मौजूद हैं, तो अब जो है ना, ये दीन ऊपर से जो आया है हिदायत के तौर पे, जो दीन आया है, इसकी क्या रेलेवेंस, इसकी क्या जरूरत है, ठीक है ना भाई। जो अच्छाई है हमारे अंदर, उसकी बुनियाद पर हम अच्छाई करते हैं, और जो बुराई है हमारे अंदर, उसकी बुनियाद पर हम बुराई करते हैं, तो अब ये दीन और हिदायत और इन सब का क्या क्या फायदा या क्या इसकी जरूरत, ठीक है। तो इसकी जरूरत ये है कि एक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया के अंदर सिर्फ हमें पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाकायदा हमारे दुश्मन का निजाम भी पैदा किया है, राइट। हमारे दुश्मन का निजाम, जब हमारे जद्द अमजद आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो उस वक्त जो है ना, वो शैतान भी बन गया ना। पहले तो वो अजाजील था, सजदे करता रहता था खाली, लेकिन फिर वो दुश्मन बन गया आदम अलैहिस्सलाम का, और उसने कसम खाई कि मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो अब दुश्मन जो है ना, वो क्या करता है कि हमारे अंदर जो अच्छी चीजें हैं ना, इन अच्छी चीजों को वो झूठ बोल बोल करके, धोखा दे दे करके हमसे छुपवाता है, हमसे दबवाता है, उन अच्छी सलाहियतों को इग्नोर करवाता है, और जो बुरी सलाहियतें हैं उनको भी क्या करता है वो शैतान, वो धोखे के जरिए से, झूठ के जरिए से उन बुरी बातों को उभारता है या हमसे उभरवाता है ना, हमें कन्विंस करता है इस बात पर कि हम उन बुरी बातों को उभारें, उन बुरी बातों को बढ़ाएं, ठीक है। ये शैतान ये वाला काम करता है। तो अल्लाह ताला ने जहां शैतान को बनाया, वहीं पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदे भी हमें हिदायत दे करके भेजे, हिदायत दे करके भेजे, दीन दे करके भेजे, ठीक है। तो वो हमें क्या सिखाते हैं, वो हमें सिखाते हैं बिल्कुल शैतान का ऑपोजिट, शैतान का उलट, कि अच्छी बातों को कैसे तुमने उभारना है और बढ़ाना है, और बुरी बातों को तुमने दबाना है, छुपाना है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम आपसे एक सवाल करते हैं, पिछली क्लास वाला सवाल जदाकला किसी ने हमें रिमाइंड करवाया, वो मुझे याद भी था, लेकिन वो बाद में आएगा इंशाल्लाह। तो अभी पहले इस सवाल का जवाब दें कि ये जो दीन है, ये जो हिदायतें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नेक बंदों के वास्ते से हमें पहुंचाई हैं, तो वो हमें अच्छी बातों को उभारना सिखाते हैं, उसका क्या तरीका बताते हैं, क्या तरीका बताते हैं जिससे कि हमारी अच्छी बातें उभरें, प्रोमिनेंट हो जाएं, बढ़ जाएं, क्या तरीका है वो, ये आप लोगों से सवाल है। इन्होंने जवाब दिया तस्किया, तस्किया, तस्किया जो है ना, ये तो बड़ा टेक्निकल किस्म का लफ्ज है, तो इससे तो मेरे ख्याल में किसी के पास समझ में नहीं आएगी। तो थोड़ा सा आसान तरीके से नहीं बता सकते, नेकों की महफिल इख्तियार का है, इख्तियार करना, ठीक है, सुन्नत तरीके को अपनाना, तकरार करना, नेक बंदों की सोहबत इख्तियार करना, अच्छे लोगों की सोहबत, अल्लाह वालों की सोहबत, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करके, गुनाह का इल्म देकर, गुनाह को गुनाह समझा कर, इस्लाह करके। माशाल्लाह, सब सबने जो है वो अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं। लेकिन एक सबसे सादा तरीन और आसान तरीन, तो खैर क्या कहें उसको, लेकिन सादा तरीन जरूर कह सकते हैं, ठीक है, और कुरानी, राइट। कुरानी जो तरीका है, ठीक है, जो कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें अच्छी चीजों को बढ़ाने का तरीका बताया है, गुर बताया है, वन वर्ड, एक लफ्जी गुर। वहां तक किसी की नजर नहीं गई अभी तक। याद दहानी, ठीक है, ये सारी बातें सही हैं, ये गलत नहीं है, जो जो कुछ आप लोगों ने लिखा है ये माशाल्लाह सब अच्छा है, लेकिन वो एक लफ्ज जो है ना, उधर किसी की अभी तक तवज्जो नहीं गई। जो कुरान मजीद कहता है कि तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी जो, भाई देखें, अब्दुलराम आपको टिप्स देते हैं इसके ऊपर, ठीक है, ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की पहचान है, ये जो अच्छाई की पसंद है हमारी तबीयत के अंदर, ठीक है ना, ये क्या है, ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं ना, ये अल्लाह ताला की नेमत है कि नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी नेमत को बढ़ाने का हमें क्या तरीका बताते हैं, अपनी नेमत को ज्यादा करने का। चले अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी हुई, ठीक है ना, ल इन शकरतुम ल अजीदन्नकुम, अजीदन्नकुम, मैं जरूर बिल जरूर तुम्हारी नेमतों को तुम्हारे ऊपर बढ़ाऊंगा अगर तुम इन नेमतों का शुक्र अदा करोगे, शुक्र अदा करोगे, ठीक है ना। तो ये है कुरान मजीद का वन वर्डेड सल्यूशन या वन वर्डेड तरीका, नेमतों को, अच्छाइयों को जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिली है, इनको बढ़ाने का, ठीक है ना। अब हमने सारी जिंदगी करना क्या है, शुक्र करना सीखना है और शुक्र करना है, सीखना है और करना है ना, इल्म हासिल करना, अमल करना, शुक्र करना का तरीका सीखना और शुक्र करते रहना, शुक्र करने का तरीका सीखना और शुक्र करते रहना, ठीक है ना। ये है, कितना आसान हो गया ना, बस वो शुक्र करना अब जरा मुश्किल काम, मतलब शुक्र करना सीखना ये थोड़ा सा अब तफसील हो जाती है इसके अंदर, और वाकई करना ये जरा सा मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके बाद दूसरी भी बात फरमा दी, ठीक है, कि अगर तुम शुक्र नहीं करोगे तो ये क्या कहलाएगा, ये कुफर कहलाएगा, ये भी बता दिया हमें, वला इन कफर तुम इन्ना अजाबी लशदीद, और अगर तुम शुक्र नहीं करोगे ना बल्कि कुफर करोगे, कुफर का मतलब क्या होता है, छुपाना, ढांक देना, ढांप देना, ठीक है। किसान बीज को जमीन में छुपा देता है ताकि फिर वो बीज आगे बढ़े ना, फूटे फटे और उसके बाद उसमें से पौधा निकले, तो वो बीज को छुपा देता है। तो किसान के लिए भी अरबी जुबान के अंदर लफ्ज काफिर इस्तेमाल हुआ है, काफिर, लेकिन ये उसके लफ्जी मानी के अतबार से है कि वो लफ्जी, तो वरना तो एक किसान जो है वो बड़ा अच्छा इंसान, बड़ा अच्छा मोमिन भी हो सकता है, लेकिन वो इस्तिलाही माने के अतबार से वो मोमिन हो सकता है, लेकिन लफ्जी माना तो काफ, छुपाने वाले का लफ्जी माना जो होता है ना वो काफिर होता है, ठीक है। तो शैतान हमें फिर कुफर सिखाता है, यानी अच्छाइयों को दबाओ, छुपाओ, ठीक है ना, शुक्र ना करो उनके ऊपर, सही है। तो नबी और नबियों के जो वरसा हैं वो आकर के हमें सीधा सीधा शुक्र करना सिखाते हैं और कुफर ना करने की तलकीन करते हैं और कुफर से बचने की के तरीके सिखाते हैं, ठीक है। यानी अगर हम किसी चीज का शुक्र नहीं करते तो हम कुफर कर रहे होते हैं, क्या मैं सही सोच रही हूँ जी। कुफराने नेमत, तो उर्दू जुबान में बाकायदा लफ्ज भी है, कुफरान नेमत, तो नेमत का कुफर करना यानी हम नेमत का शुक्र नहीं कर रहे हैं,
तो इसको कुफरान नेमत कहते हैं, ठीक है ना। बहरहाल उस नेमत को हम इग्नोर कर रहे होते हैं, ठीक है ना, या उस नेमत को हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते हैं, उस नेमत के ऊपर हम शुक्र नहीं कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें कुफर है, ठीक है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर हम शादीशुदा हैं और हमने कुफरान नेमत कर ली तो हमारे निकाह टूट जाएगा क्योंकि हमने कुफर कर लिया है, ठीक है। नहीं, ये वो वाला कुफर नहीं होता, लेकिन बहरहाल नेमत का कुफरान नेमत तो होती है, गुनाह तो होता है ये, ठीक है। ईमान इससे जायल नहीं हो जाता अनलेस कि हम ईमान की नेमत का जो है वो कुफर कर दें, तो फिर तो ईमान जायल हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज बाकी नेमतों के कुफर करने से ईमान जायल नहीं हो जाता, लेकिन गुनाह तो फिर भी होता है, ठीक है। और गुनाह होता है कुफर का, तो फिर अल्लाह ताला का अजाब भी मिलता है फिर किसी न किसी शक्ल में। अच्छा, अब जो है ना, ये जो हम मारूफ मसाइल में पढ़ रहे थे कि आखिरी आयत में जो ये इरशाद है कि अगर तुम अल्लाह की रहमत के खजानों के मालिक हो जाओ तो तुम बुखल करोगे, किसी को ना दोगे, इस खतरे से कि अगर लोगों को देते रहे तो ये खजाना खत्म हो जाएगा, अगरचे रहमत रब का खजाना खत्म होने वाला नहीं है, मगर इंसान अपनी तबीयत से तंग दिल कम हौसला होता है, उसको फराखी के साथ लोगों को देने का हौसला नहीं होता, ठीक है। तो जब हम नबियों की लाई हुई हिदायत के ऊपर अमल करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि ये जो नेगेटिव सिफात अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखी है ना, फतूर, अजूल, जहूल, जलूम, ये सारी नेगेटिव सिफात है ना, तो ये नेगेटिव सिफात जो होती हैं ये छुप जाती हैं, ये दब जाती हैं, और पॉजिटिव सिफात जो है वो शुक्र की वजह से बढ़ जाती हैं। इसी वजह से जो कामिल ईमान वाले होते हैं वो ना जलूम होते हैं, ना वो जहूल होते हैं, ना वो अजूल होते हैं, राइट, ना वो जो है वो बगावत करने वाले होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने नबियों की बात मान करके इन सिफात को छुपा दिया, दबा दिया, ठीक है। सहाबा में आप इसकी मिसालें, अनगिनत मिसालें सहाबा के अंदर आप देख सकते हैं, तो भाई वो भी तो इंसान ही थे ना, वो भी तो उसी तरीके से दुनिया में आए थे जिस तरीके से मैं और आप दुनिया के अंदर आए हैं, है ना, उनकी भी जिस्म बिल्कुल वैसे ही होते थे जैसे हमारे और आपके जिस्म है, उनके अंदर भी नफ्स होता था, उनके अंदर भी कल्ब होता था, राइट, उनके पास भी एक ही दिमाग होता था, चार दिमाग नहीं होते थे उनके पास, एक ही कल्ब होता था, राइट। तो फिर वो कैसे ऐसे बन गए कि कतूर वाली सिफत उनके अंदर से खत्म हो गई? नहीं, उन्होंने दबा दिया कतूर वाली सिफत को नबी अलैहिस्सलाम की बात मान करके, ठीक है। हम भी अगर नबी अलैहिस्सलाम की बात मानेंगे तो हमारी भी ये मनफी सिफात दब जाएंगी, ठीक है। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि इसमें खजाइन रहमत, रहमत रब के लफ्ज से आम मुफस्सरीन ने माल दौलत के खजाइन मुराद दिए, तो ये बात हम पिछले हफ्ते पढ़ चुके थे, और इसके बाद फिर हमने आपसे एक सवाल किया था जिसपे हमने क्लास को खत्म किया था, वो ये था कि ये जो खुशहाली का इन्होंने यहाँ पे बताया था ना कि अगर तुम्हारी फरमाइश के मुताबिक तुम्हें जमीन मक्का में सब कुछ दे भी दिया जाए और खजाइन का मालिक तुम्हें बना दिया जाए, तो इसका अंजाम भी कौमी और मुल्क के आवाम की खुशहाली नहीं होगी, बल्कि इंसानी आदत के मुताबिक जिनके कब्जे में ये खजाइन आ जाएंगे वो उन पर सांप बनकर बैठ जाएंगे, आवाम पर खर्च करते हुए अफलास का खौफ उनको माने होगा, ठीक है। यानी अवाम पर वो खर्च नहीं करेंगे बल्कि उनको खौफ होगा कि अगर हमने अवाम पे खर्च किया तो हम भी मुफलिस हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी सूरत में बजुज इसके कि मक्का के चंद रईस और ज्यादा अमीर और खुशहाल हो जाएंगे, अवाम का क्या फायदा होगा, ठीक है। तो अब हमने इसके ऊपर आपसे सवाल किया था कि भाई पाकिस्तान, इंडिया और गरीब मुल्कों के अंदर तो ऐसा नजर आता है कि जो यानी अवाम जो है ना वो मुफलिस होते हैं, ठीक है, और उनके जो सरदार होते हैं वो बड़े अमीर होते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको दिया होता है, वो अवाम पे खर्च नहीं कर रहे होते, इस वजह से वो अमीर हो जाते हैं और गरीब जो है वो गरीब तर हो जाते हैं। लेकिन काफिर, खुसूसन जो मगरबी ममालिक हैं, तो वहां पर तो ऐसा नहीं होता, वहां पर तो अवाम भी बड़े खुशहाल होते हैं और उनके अमीर भी बड़े खुशहाल होते हैं, तो इससे तो ऐसा लगता है कि उनके अमीर जो हैं वो अपने अवाम के ऊपर खर्च कर रहे होते हैं, तो इस वजह से अवाम खुशहाल हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है,
ये बज़ाहिर आपको नजर आता है, ये हकीकत में ऐसा है नहीं। तो ये हमने आपसे सवाल किया था कि ऐसा ऐसा क्यों नजर आता है, ठीक है? तो अब अगर उसका आप लोग जवाब कुछ सोच करके आए हैं तो वो आप जवाब दे दें, बल्कि भांडा तो फोड़ दिया वैसे। तो ऐसा क्यों होता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो है वो अब क्या वो आवाम के ऊपर खर्च कर रहे होते हैं? क्या उनके अंदर से ये सलाहियतें जो होती हैं, यानी कतूर वाली सलाहियत उनके अंदर नहीं होती, कतूर वाली बुराई उनके अंदर नहीं होती क्या, उनके उनके अमीरों के अंदर? ठीक है, तो इसका चलिए वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से ये आगे बढ़ते हैं कि वहां पर भी असल में यही हो रहा होता है कि जो उनके अमीर होते हैं ना, वो माल दौलत को समेट के बैठे हुए होते हैं, और उनके गरीब जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, ठीक है? लेकिन हमारे मुआशरे में और उनके मुआशरे में एक फर्क ये है कि हमारे यहाँ जो है ना, ये चीजें जो हैं वो बहुत ही यानी जिसको कहते हैं क्रूड तरीके से, CRUDE, क्रूड, उर्दू में तो इसका एक ही लफ्ज मुझे समझ में आता है, खाम, खाम, खा अलिफ मीम, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल जमीन से अगर आप तेल निकालते हैं ना, तो उसको कौन सा तेल कहते हैं? उसको खाम तेल कहते हैं। वो तेल जो है ना, वो आप अपनी गाड़ियों में पेट्रोल के तौर पे नहीं डाल सकते, ठीक है? तो खाम तेल को पहले जो है वो रिफाइन किया जाता है, रिफाइन करने के बाद वो खाम तेल जो होता है ना, वो आपकी गाड़ियों में पेट्रोल के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, आपकी मशीनों के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। तो खाम जो है होता है ना, उसको अंग्रेजी में क्रूड कहते हैं, यानी उसके अंदर बड़ी मिलावटें होती हैं, बड़ा वो गंदा होता है वो, ठीक है? हमारे मुआशरे में और मगरबी मुआशरे में फर्क ये है कि हमारे यहाँ जो बुराइयां होती हैं ना, वो बड़े खाम तरीके से बुराइयां होती हैं, यानी उनकी क्रूडनेस और उनकी जो गंदगी जो होती है ना, वो हमें बहुत ज्यादा नजर आ रही होती है। जबकि मगरबी मुआशरे की खासियत ये है कि मगरबी मुआशरा जो है ना, अहले मगरब वाले ये हैं धोखे के चैंपियन, धोखा, ठीक है? तो ये क्या करते हैं कि ये बुराई तो ये भी वही कर रहे होते हैं, लेकिन ये बड़े रिफाइन तरीके से बुराई कर रहे होते हैं, है ना? उसके ऊपर बड़ा जैसे लेपा पोती करके फिर बुराइयां कर रहे होते हैं, इस वजह से वो ऊपर से बुराइयां नजर नहीं आ रही होती हैं, अंदर बुराई बुराई होती है लेकिन ऊपर से जो है ना, वो बुराई नजर नहीं आ रही होती है, वो बड़ा अच्छाई नजर आ रही होती है, ठीक है? तो इस वजह से हमारे यहाँ गुर्बत जो है वो बड़े यानी बुरे अंदाज में नजर आ रही होती है, हर बंदा देख करके, अच्छा ये झुग्गियों में रहते हैं, ये झोपड़ियों में रहते हैं, ये जो है वो इतने गंदे इलाके में रहते हैं, यहाँ पे जो है वो गंदी नाली गुजर रही है और सफाई नहीं है और कचरा पड़ा हुआ है और जो है वो बीमारियां फैल रही हैं और मच्छर हैं और मक्खी है और न जाने क्या क्या वायरसेस हैं, है ना? ये सब कुछ हमारे यहाँ नजर आ रहा होता है, जबकि इनके यहाँ जो है आपको गंदी नालियां नजर नहीं आ रही होती हैं, ठीक है ना? आपको जो है वो टूटी हुई सड़कें नजर नहीं आ रही होती हैं, आपको जो है वो मच्छर भिन-भिनाते हुए, मक्खियां भिन-भिनाते हुए नजर नहीं आ रही होती हैं, ठीक है? तो हम समझते हैं कि यहाँ तो बड़ा बड़े अच्छे लोग रहते हैं और बड़े जो है ना वो माल दौलत वाले लोग रहते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं, ठीक है ना? इवन अमरीका जैसे मुल्क के अंदर भी जो है ना, वो स्लम्स होते हैं और उन इलाकों को जो जो हमारे यहाँ झुग्गियों झोपड़ियों वाले इलाके कहलाते हैं ना, उनको अंग्रेजी के अंदर स्लम्स कहते हैं, SLUMS, स्लम्स। स्लम्स के अंदर अगर आप जाएं ना, तो वहां पर भी कोई ज्यादा मुख्तलिफ सूरत हाल नहीं होती हमारे झुग्गियों वाले इलाकों से, ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होती, बल्कि वहां पर तो यानी और ही मुख्तलिफ किस्म का माहौल होता है, ठीक है ना? यानी वहां पर एक तो क्राइम बहुत ज्यादा होता है, लूट मार बहुत ज्यादा होती है, वहां पे पुलिस जो होती है ना, वो फटकती भी नहीं है ऐसी जगहों पर, ठीक है? लोगों ने अपने घरों के ऊपर जो है वो यानी ऐसे सलाखें लगाई हुई होती हैं, ऐसे जालियां लगाई हुई होती हैं कि उनको खौफ होता है कि कोई इनके घर के दरवाजे तोड़ करके उसके अंदर घुस जाएगा, ठीक है? जो दुकानें होती हैं, तो दुकानों के अंदर जैसे हमारे होते हैं ना कि दुकान में एक एक वो क्या कहते हैं, दुकानदार अंदर होता है और बाकी लोग बाहर होते हैं, बाकी बाहर के लोग अंदर नहीं आ सकते। अब तो स्टोर्स वगैरह के अंदर अब लोग अंदर आते हैं ना, चलते फिरते हैं, लेकिन वो इस वजह से क्योंकि सिक्योरिटी कैमराज लगे हुए होते हैं, कोई चोरी कर नहीं सकता, वरना पहले ऐसे नहीं होता था, है ना। अभी भी जो हमारी छोटी किरयानी की दुकानें और ग्रोसरी की दुकानें होती हैं, तो लोग कस्टमर जो होते हैं वो बाहर खड़े होते हैं, वो कहते हैं जी मुझे वो चीज़ दे दीजिएगा, दुकानदार पीछे जाकर वो चीज़ लेकर के आता है, ऐसे ही है ना। तो अमेरिका यूरोप के अंदर भी ऐसे दुकानें भी होती हैं, ऐसी जगहों के ऊपर स्लम्स के अंदर, कि जहां पर वो अंदर दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि वो चोरी करके ले जाएंगे और कोई उनको रोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि पुलिस ने आना ही नहीं है वहां पर। वो तो उन इलाकों के अंदर जहां पे पुलिस आ सकती है वहां पर लोगों को इजाजत होती है कि वो अंदर आ करके चीज को उठा करके पेमेंट करके फिर उसके बाद लेकर के जाए, क्योंकि सिक्योरिटी कैमराज भी होते हैं। और सिक्योरिटी कैमरा खाली काफी तो नहीं है, अगर उन्होंने किसी को चोरी करते हुए देख भी लिया सिक्योरिटी कैमरा को, तो वो कैमरा क्या कर लेगा, उस कैमरा ने तो ज्यादा से ज्यादा पुलिस को ही बताना है ना, ठीक है ना। तो पुलिस आएगी तब उस बंदे को पकड़ेगी, लेकिन अगर पुलिस ही ना आए तो फिर कैमरे का क्या फायदा, सिक्योरिटी अलार्म का क्या फायदा अगर पुलिस ही ना आए, राइट। तो ऐसी जगह तो अमेरिका में भी होती हैं, सही है। लेकिन इवन उन जगहों पर भी जहां पर ये सारे मसले नहीं भी हैं ना, जहां पर कि आपको बड़ी सफाई सुथराई नजर आती हो आ रही होती है, इवन वहां पर भी एक बहुत बड़ा रिच एंड पुअर गैप होता है ना। रिच और पुअर का गैप बहुत बड़ा है और ये बढ़ता चला जा रहा है, ये मुस्तकिलन बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। आजकल के आदाद शुमार के हिसाब से अमेरिका के अंदर जो अमीर लोग हैं ना, वो less than 1% ऑफ पॉपुलेशन, 1% से भी कम लोग जो है ना वो अमीर हैं, और उनके पास मुल्क के 21% जो वसायल हैं वो सिर्फ less than 1% ऑफ अमेरिकन के पास होते हैं। 21% पूरे मुल्क के जितने वसायल होते हैं ना, जितनी माल दौलत होती है, वो सिर्फ 1% से भी कम लोगों के पास वो माल दौलत है, और बाकी 99% जो लोग हैं तो उनके अंदर जो है वो बाकी 69% जो माल दौलत है वो उन लोगों के अंदर तकसीम हो रही होती है। और दूसरी बात ये भी है कि जो आपके अच्छा तबका नजर आ रहा होता है ना, मिडिल क्लास तबका नजर आ रहा होता है, वो कर्जों के बोझ तले भी बहुत ज्यादा दबे हुए होते हैं। तो वो कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, राइट। तो वो कर्ज की मैं यानी कर्ज की शराब पी पी करके बड़े मजे की जिंदगी गुजार रहे होते हैं और समझते हैं कि जी कोई मसला ही कोई नहीं है, हालांकि उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा कर्जे हैं। तो ये कोई अमारत तो नहीं हुई ना, ये कोई खुशहाली तो नहीं हुई ना कि आप कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं, बस आप खाना पीना कर्ज ले लेकर के खाना पीना चला रहे हैं, अपना क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर अपनी जो है वो जिंदगी चला रहे हैं, दूसरे लोगों को धोखा लगा हुआ है कि आप बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, राइट। हमारे यहाँ वही क्रूडनेस, बिजली नहीं आ रही तो गैस नहीं आ रही, अब तो सुना है कि गैस जो है वो इतनी खत्म हो गई है कि लोगों ने लकड़ी के चूल्हे लगा लिए हैं अपने घरों के अंदर, राइट। लकड़ी के चूल्हे के अंदर जो है ना वो लकड़ी के जो धुआं होता है उसको धुनी ले ले करके जो है वो उनको सांस का मर्ज हो गया है, लेकिन चल रहा है इस तरह से मामला, अजीबो गरीब मामला है। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह किसी को कोई लगता है जैसे कोई फिक्र ही कोई नहीं है कि कोई कम से कम एहतजाज ही कर लें भाई इसके ऊपर कि किधर चलेगी सारी की सारी गैस, इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं आती, हालांकि दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इतनी सस्ती हो चुकी है, इतनी सस्ती हो चुकी है कि गोया कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है, उसके उस यानी तकरीबन उसकी कोई कीमत नहीं है इलेक्ट्रिसिटी। इतने तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, सोलर से लेकर के कचरा तक, कचरे से भी जो है वो दुनिया इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर रही है, ठीक है, कचरे से भी। और सोलर एनर्जी जो है वो तो इतनी है कि जिसकी कोई तस्वुर ही नहीं उसके कमी कम होने का। न्यूक्लियर एनर्जी इतनी बड़ा सोर्स है एनर्जी का और ये हर जगह मौजूद है, कोई पाबंदियां नहीं है किसी के ऊपर, ठीक है। और गैस भी जो है वो भी यानी ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गई है पाकिस्तान की गैस, बहुत जखीरे हैं, मिलते रहते हैं, हर थोड़े दिन के ऊपर कोई खबर आती है, कभी जो है वो पेट्रोल के जखीरे की, तेल के जखायर की खबर आ रही होती है, कभी गैस के जखायर की, कभी कोयले के जखायर की, कभी गोल्ड के जखायर की, फिर अगले दिन वो खबर गायब हो जाती है। कहाँ चली गई भाई? खबर आई थी तो क्यों आई थी? ख्वाब आया था किसी को? ख्वाब की बुनियाद पे आपने खबर लगा दी थी, या वाकई कोई जखीरा मिला था तो वो आपने खबर लगाई थी? जब कोई जखीरा मिला था फिर आपने खबर लगाई थी, तो अब वो जखीरा किधर चला गया? राइट तो ये क्रूड किस्म की करप्शन हमारे यहाँ है, जिसकी अपनी वजूहात है जाहिर है उसकी, ठीक है ना, लेकिन हम उनके जो दूर के ढोल सुहाने हैं, यूरोप के अंदर ऐसा अच्छा मामला है और अमेरिका के अंदर ऐसा अच्छा मामला है, तो भाई मामला कहीं भी अच्छा नहीं है, है ना? ये कुफर, काफरी, गुनाह, जुल्म, ये हर जगह है ना, ये हर जगह है, ये कोई कोई इसके अंदर इस्तिस्ना नहीं है, कोई इसके अंदर एक्सेप्शंस नहीं है, सिवाय फर्क क्या है? नजरों के धोखे का फर्क है, और बस, और कोई नहीं। हम धोखे में आ जाते हैं, हम जाहिल हैं, हमें कुछ पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, इस वजह से हम धोखे में आ जाते हैं, समझते हैं कि वो बड़े अमीर और खुशहाल लोग हैं और हम जो है वही वही खाली गरीब हैं। भाई सारे के सारे जालिम भी हैं और सारे के सारे मजलूम भी हैं, जुल्म और जलालत और यानी जालिमियत, इससे निकलने का तो सिर्फ एक ही रास्ता था, अल्लाह की भेजी हुई हिदायत के ऊपर अमल करना, उसको कबूल करना, उसके ऊपर अमल करना। वो ना वेस्ट वाले करते हैं, ना ईस्ट वाले करते हैं, ना सेंटर वाले करते हैं, ना जो है वो नॉर्थ वाले, ना साउथ वाले, इस वजह से जुल्म तो हर जगह है, ठीक है ना। हमारा यकीन, हमारा ईमान इतना खराब है कि हम समझते हैं कि जो अल्लाह की हिदायत को ठुकराने वाले हैं वो खुशहाल भी हैं। भाई कैसे खुशहाल है? वो तो खुशहाल नहीं है, हमारा यकीन खराब है ना, कि हमें इस बात पर यकीन ही नहीं कि सिवाय अल्लाह के रास्ते की और नबी अलैहिस्सलाम के रास्ते की खुशहाली का कोई और रास्ता हो ही नहीं सकता, हमें इस बात पर यकीन ही नहीं है। हम मुनकिरीन को भी खुशहाल समझना शुरू कर देते हैं, हमारे यकीन की कमी है ना, हमें अपने यकीन की कमी को दूर करने की जरूरत है। आगे हजरत फरमाते हैं कि सैयदी हकीमुल, हजरत हकीमुल उम्र थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, बल्कि एक मिनट मुझे पॉज करने की जरूरत है। हजरत सैयद हजरत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान कुरान में इस जगह रहमत रब से मुराद नबूवत व रिसालत और खजाइन रहमत से मुराद कमालात नबूवत लिए हैं, ठीक है। अल्लाह ताला की रहमत क्या है? नबूवत व रिसालत, ठीक है, यानी जो हिदायत अल्लाह ताला ने अपने नबियों के वास्ते से हमें भेजी है ना, यही अल्लाह ताला की रहमत है, और इसी के कबूल करने में ही अल्लाह ताला की रहमत हमें मिलती है, ठीक है। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है अल्लाह ताला की रहमत का मुस्तहिक हो जाने का, ठीक है। और खजाने रहमत से मुराद कमालात नबुवत लिए हैं, यानी जो रहमत के खजाने हैं, बड़े जो इनके अंबार लगे हुए, वो क्या हैं? जो नबियों के अंदर जो अल्लाह ताला ने सिफात पैदा की होती हैं, जो कमालात पैदा किए होते हैं, ये खजाने रहमत से ये मुराद है, ठीक है। यानी बेसिकली दोनों का लुबे लुबाब क्या है, दोनों का सम टोटल क्या है? नबुवत, अल्लाह ताला से मिली हुई हिदायत, उसी को तो नबुवत कहते हैं। इस तफसीर के मुताबिक इसका रब्त आयात सबका से ये होगा कि तुम जो नबुवत व रिसालत के लिए बेसरोपा और बेहुदा मुतालबात कर रहे हो, कि भाई आप बाग बना दें और बाग के अंदर से नहरें चला दें और आसमान को तोड़ करके हमारे ऊपर गिरा दें और अल्लाह और उसके फरिश्तों को हमारे सामने लाके खड़ा कर दें, ये सब क्या है? बेसरोपा और बेहुदा मुतालबात हैं। ये जो तुम हमसे कर रहे हो ना, इसका हासिल ये है कि तुम मेरी नबूवत को मानना नहीं चाहते हो, असल मकसद ये है कि तुम मेरी नबूवत को मानना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो क्या फिर तुम्हारी ख्वाहिश ये है कि नबूवत का निजाम तुम्हारे हाथों में दे दिया जाए कि जिसको तुम चाहो नबी बना लो? यानी तुम नाराज होते हो तो तुम्हारी नाराजगी को दूर करने के लिए तुम्हें जो है वो इख्तियार दे दिया जाए कि तुम जो है ना जिसको चाहते हो तुम नबी नबी बना लो।
तो फरमाते हैं कि अगर ऐसा कर लिया जाए तो इसका नतीजा ये होगा कि तुम किसी को भी नबुवत व रिसालत ना दोगे, बुखल करके बैठ जाओगे। तुम्हारे इख्तियार में अगर दे दिया ना नबुवत व रिसालत को, तो तुम ना फिर उसको दबा के बैठ जाओगे, बुखल करके बैठ जाओगे। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने इस तफसीर को नकल करके फरमाया है कि ये तफसीर मवाहिबे इलाहिया में से है। ठीक है, यानी हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये तफसीर बयान करी है इसकी, जबकि पीछे फरमाया था पिछले पैराग्राफ के अंदर कि आम मुफस्सरीन ने फरमाया कि यहाँ पर रहमत रब्बी से मुराद जो है वो माल और दौलत के खजाने हैं। ठीक है, लेकिन हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह 20वीं सदी में भी देखें कि अल्लाह ताला ने उम्मत के ऊपर कैसे एहसान फरमाए कि इवन अपने हबीब अलैहिस्सलाम का जमाना गुजरे हुए 1300 साल गुजर गए, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हमारे दरमियान ऐसे रिजाल पैदा फरमा रहे हैं कि जिनके जरिए से अल्लाह ताला ऐसी ऐसी हिकमत की बातें हम तक पहुंचाएं। राइट, तो ये अल्लाह का एहसान है ना हमारे ऊपर। अगर अल्लाह ताला ऐसे करते कि नहीं, अब तो बहुत देर हो गए, मेरे नबी को गुजरे हुए 1300 साल गुजर गए, अब मैंने तुम्हें जो है ना वो कोई अच्छा इंसान नहीं देना, कोई ऐसा बंदा तुम्हें मैं नहीं अता करूंगा कि जो तुम्हारे सामने मेरे दीन की हिकमतों को खोल के बयान कर सके, तो फिर हम क्या कर लेते। लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, है ना। इस दौर में भी अल्लाह ताला ऐसे लोग हमारे दरमियान पैदा फरमाते रहते। ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है, कितना बड़ा फजल है। राइट, अब ये हमारे मसला है ना कि हम इन लोगों की कदर नहीं करते हैं। राइट, हम इस नेमत के ऊपर शुक्र नहीं करते हैं, बल्कि हम जो है वो बस ज्यादा से ज्यादा अगर करते भी हैं तो वाह वाह करते हैं, वाह वाह, और हम जो है ना वो बैठ के इंतजार करते हैं कि ये मरें जल्दी से। राइट, हम क्या करते हैं, हम बैठ के इंतजार करते हैं कि ये जरा सा मरें, फिर मरने के बाद जो है ना वो हम इनके सोग मनाएंगे और इनकी बरसी मनाएंगे और इनको जो है ना वो हम अलकाबात दे देंगे, किसी को हम जो है वो हकीमुल उम्मत कह देंगे, किसी को हम जो है वो शेखुल इस्लाम कह देंगे, किसी को हम जो है वो और इस किस्म के बड़े बड़े अलकाबात हमने जमा करके रखे हुए हैं अपने पास ना, तो
बिल्कुल
हर मरने वाले को हम कोई लकब दे करके उसको फारिग कर देते हैं फिर। ठीक है ना, जिंदों की कदर नहीं करते हम। जब भी हमारे बुजुर्ग हमें समझाते हैं कि ये जो कौम है ना, खुसूसन इंडिया पाकिस्तान की जो कौम है, यानी ये जो बरेसगीर पाक हिंद की कौम है, खुसूसन इनके बारे में कई बुजुर्गों ने फरमाया कि ये मुर्दा परस्त कौम है। मुर्दा परस्त यानी ये बंदे के मरने का इंतजार करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो उसके तारीफ के कुलाबे मिलाते हैं और बस। ठीक है भाई, जिंदों की कदर करना, जिंदों की कदर करने का मतलब क्या होता है? जिंदों की कदर करने का भी वो मतलब नहीं होता जो कि हम जिंदों के साथ भी करते हैं, फूलों के हार चढ़ाने और उनको जो है वो बयानात के लिए बुला लेना, या उनको जो है वो हदिये दे देना, या उनको जो है वो उनकी तारीफ के पुल बांध देना, ये भी ये जिंदों की भी कदर नहीं होती है। कदरदानी का मतलब है कि उनके पैगाम के ऊपर यकीन लेकर के आना, उनके पैगाम को सच समझना और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करना, उसको सीखना, अमल की कोशिश करना और उस पैगाम को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करना, यह है जिंदों की कदरदानी। राइट, लेकिन यही जो असल काम है यही हम नहीं कर रहे होते, बाकी सारे काम हमसे करवा लो। ठीक है, और फिर जब मर जाते हैं तो मरने के बाद फिर और ज्यादा फूल फूल हार वगैरह जो है वो उसके बाद पहनाते फिरते हैं। ठीक है, तो वो मरने के बाद तो वैसे भी, और क्या, मरने के बाद तो वैसे भी उन्होंने जो है वो हमें आकर के हमारे सवालों के जवाब तो वैसे भी नहीं देने। राइट, जिंदा थे तो फिर हमें इल्म सिखाते थे ना और हमारे सवालों के जवाब देते थे, लेकिन मर गए तो मरने के बाद तो वो सिलसिला भी खत्म हो गया, वो विंडो भी क्लोज हो गई ना, टू वे कम्युनिकेशन वाली विंडो क्लोज हो गई। ठीक है, अब आप किताबें पढ़ लें तो उससे क्या होता है, किताब में पढ़े होते हैं आप मरे हुए लोगों की, तो उस्ताद कौन होता है आपका उस वक्त? उस्ताद तो फिर शैतान होता है। ठीक है, चाहे आप किसी की भी किताब पढ़ रहे हो, अगर आपके पास कोई जिंदा शेख नहीं है तो फिर तो आपका उस्ताद शैतान है।
चाहे आप थानवी रहमतुल्लाह की किताब पढ़ रहे हो, चाहे आप जो है वो किसी चीज़ की भी किताब पढ़ रहे हो, कितनी अच्छी से अच्छी चीज़ की किताब पढ़ रहे हो, ठीक है। तो शेख तो जिंदा इंसान को कहते हैं ना, मरे हुए लोगों को तो शेख नहीं कहते, जिंदा इंसान को शेख कहते हैं, जो कि आपकी इसलाह करता है, जो कि आपकी गलतियों को के ऊपर आपको टोकता है, तो वो तो फिर जिंदा। बहरहाल, तो ये किताबों और ये कैसेटों और जो आजकल क्लिप्स वाला जो सिलसिला चल रहा है ना, ये हिदायत का रास्ता नहीं होता, ये हिदायत का रास्ता नहीं होता, ठीक है। इधर क्लिप सुन ली, इधर जो है वो, और आप जिंदा किसी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। बहरा चले, तो थानवी ने फरमाया कि इस तफसीर को नकल करके फरमाया है कि ये तफसीर मवाहिब इलाहिया में से, यानी ये वहबी तफसीर है, ये अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इल्का फरमाई। वहबी, वहबी कहते हैं जो कि बकायदा तोहफतन की अल्लाह ताला ने किसी को अता फरमा दिया, उसको वह भी चीज कहते हैं, ठीक है। तो ये तफसीर मवाहिब इलाहिया में से है कि मकाम के साथ नहायत चस्पा है, यानी बिल्कुल मुनासिब हाल है ये इस मकाम के। इसमें नबुवत को रहमत के साथ ताबीर करना ऐसा ही होगा जैसे कि आयत अहुम यकसिमून रहमत रब्बिक, ठीक है। अहुम यकसिमून, एक मिनट, क्या हो गया भाई, अहुम यकसिमून रहमत रब्बिका नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयात दुनिया व रफअना बअदहुम फौका बअदिन दरजात, ठीक है। तो उस आयत के अंदर बिल इजमार रहमत से मुराद नबूवत ही है, वल्लाहु सुभाना व तआला आलम। यानी हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो तफसीर बयान करी है ना, तो ये तो उनके दिल में ये बात आई, लेकिन ये कुरान से साबित भी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहमत रब्बिक जो है वो नबुवत व रिसालत के लिए इस्तेमाल किया कुरान मजीद के अंदर, ठीक है। तो फिर ये भी उन्होंने कह दिया कि मैं खाली अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा, बल्कि कुरान की तफसीर से ये बात साबित भी है कि असल में इसका मतलब जो है ना वो रिसालत ही है, जो रहमत रब्बी का लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, ठीक है। किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ लें, वरना आज की क्लास यहाँ पे रोकते हैं और अगली क्लास में फिर हम लिया फिर उसके बाद पढ़ेंगे, तर्जुमा करेंगे इंशाल्लाह, तर्जुमा पढ़ेंगे, खुलासे तफसीर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके मसाइल पढ़ेंगे। उसके बाद जो है वो सिर्फ दो आयात और रह जाएंगी सूरह बनी इसराइल की। लगता यह है कि रमज़ान मुबारक से पहले तो ये मुकम्मल नहीं होगा, तो इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक के अंदर जो हमारी रोज़ाना की तफसीर की क्लास होती है, तो उसके अंदर हम पहले सूरह बनी इसराइल ही ख़त्म करेंगे, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो अल्लाह ताला ने डाला कौन सी सूरत की तफसीर शुरू करनी है तो वो फिर हम शुरू करेंगे। तो रमज़ान मुबारक के मैसेजेस भी इंशाल्लाह हम ग्रुप्स के ऊपर भेजेंगे, जो पिछले सालों की तरतीब रही है वही रहेगी इंशाल्लाह, कि जूम के ऊपर क्लास होगी, और मर्दों के लिए एक अलग जूम सेशन होगा, औरतों के लिए एक अलग जूम सेशन होगा, उन दोनों के ऊपर एक साथ जो है वो ये क्लास ब्रॉडकास्ट की जाएगी, और गालिबन वही दिन का वक्त भी होगा, यानी सऊदी अरब टाइम के मुताबिक 1:30 बजे दोपहर, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 3:30 बजे दोपहर, और इंडिया टाइम के मुताबिक वो 4 बजे दोपहर का बनता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।